प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर के नाम को लक्ष्य करके राम कृष्ण आदि नामों से पुकारना चाहिए। कानून के अनुसार जितने ग्रंथ हैं उनमें फर्क है तो वो कोई बात नहीं। अपने तो जो समझ में करने योग्य काम आते हो उनको करना चाहिए, हमारा कल्याण तो उसी से ही होगा। कल्याण की तरफ चलते चलते नियत साफ होते हुए यदि कोई अनचाही भूल हो जाए उसको परमात्मा ठीक कर देते हैं, और शरण में चला जाए फिर तो कहना ही क्या है। परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, नाम लेते हुए भी भरोसा नहीं करते हैं, चरित्र सुनते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के ऊपर डालते नहीं है। आप भरोसा करके देखो किस प्रकार ईश्वर हमारी रक्षा करता है। बहुत लोगों को तो यही बात नहीं दसती कि ईश्वर है क्या। ध्यान देने की बात है, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, महात्मा हैं, सभी से ईश्वर के होने की बात मिलती है। फिर हम ऐसे कौन से बुद्धिमान हो गए कि ईश्वर को मानने में डरते हैं। ईश्वर के विषय में महापुरुषों के जो वचन हैं उनसे ही मानना चाहिए। युक्तियों से भी मान सकते हैं। आप देखो, हम वृक्षों को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, सूर्य चंद्रमा को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं। इनके देखने से मालूम होता है कि कोई एक ऐसी वस्तु है जो अलौकिक है, जो इनको बनाने वाली है। कह देते हैं ये तो प्रकृति है, प्रकृति बनाती है, इसमें ईश्वर की क्या जरूरत है। तो कहते क्या प्रकृति जड़ है या चेतन है, क्या प्रकृति अपने आप को जानती है। कोई भी चीज का निर्माण होता है किसी जानकारी के बिना अपने आप हो सकता है क्या। तो प्रकृति में भी इस प्रकार की किसने शक्ति डाली कि वो संसार के रूप में बन जाए। प्रकृति जड़ है, इसको जानने वाला चेतन है, और वो जानने वाला परमात्मा है, वो ज्ञानात्मा है, वो सर्वत्र है। हम लोगों में बुद्धि है बहुत छोटी है और उसमें अपरिमित ज्ञान है। सारी दुनिया जो देखने में आ रही है इसमें जो पदार्थ है वे बड़े अच्छे ढंग से बनाए हुए हैं। कोई आदमी की ऐसी कृति हो सकती है, इतने आदमियों को कैसे बनाएं, इतने आदमियों का कैसे प्रबंध करें, इतने आदमियों को इतने देश में कैसे बसाएं, कोई ऐसा व्यवस्थापक हो सकता है। जो कुछ हम देखते हैं उन सब में कारीगरी भरी हुई है। पक्षियों को देखो, उनके पंख किस ढंग से किस प्रकार से बने हुए हैं। हमारे हाथ की अंगुलियों को देखो, हमारे नाक को देखो, आंख को देखो, किस प्रकार से बनाए हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं उन सब में जो विचित्रता है वो ईश्वर की है। जितनी चीज है उनको बनाने वाला कोई न कोई तो है ही, अपने आप तो हो नहीं सकते। वृक्ष है तो इसका कोई बीज होना चाहिए, तो वो बीज कहां से आया कि वृक्ष से आया। तो वृक्ष कहां से आया तो बीज से आया, बीज कहां से आया, कोई इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर एक ही है, परमात्मा से पैदा हुए। परमात्मा बड़ा बुद्धिमान है। नक्षत्र चंद्र आदि सारी रात घूमते रहते हैं और कभी इनमें टकराहट नहीं होती। थोड़ी सी सावधानी हटती है तो सड़क पर कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन भगवान के चलने वाले इस आकाश में नक्षत्र खूब घूमते हैं, आपस में टकराते नहीं। कौन इनको संयमित करके चलने के लिए बोलता है, कौन सूर्य को ठीक समय पर चलाता है, ठीक समय पर उदित करता है, ठीक समय पर अस्त करता है, कोई न कोई तो है ना। ये जो संसार है उसको बनाने वाला तो है ही, वो बनाने वाला ही ईश्वर है। केवल बना करके छोड़ दिया ऐसा नहीं है, बनाता है और उसको ठीक नियंत्रित करके चलाता भी है। जैसे बिना चाबी दिए घड़ी नहीं चलती, उसी प्रकार इस पृथ्वी की हर वक्त निगरानी रहती है। पदार्थ सब जड़ है और जो इसका इंतजाम करने वाला है वो परमेश्वर है। अपने शरीर की तरफ भी ध्यान देने से मालूम होता है कि कोई न कोई बड़ा ही अलौकिक बनाने वाला है। एक बहुत ही छोटा जानवर है, बड़ी कठिनाई से दिखाई देता है। कितने ही प्रकार के चश्मों से भी वो दिखाई नहीं देता, कोई और प्रकार के दूरबीनों से दिखाई देता है। उसके भी पैर है, नाक है, मुंह है, वो भी चलता है, रेंगता है, वो भी कहीं खाता है। उसको किस मनुष्य ने बनाया? मनुष्य तो नहीं बना सकता। एक वृक्ष की तरफ भी ध्यान देने से मालूम होता है कोई मनुष्य नहीं बना सकता। हमारी अंगुली टूट गई, हमारी आंख फूट गई, उनको संसार में कोई मनुष्य नहीं बना सकता, वैसे नहीं बना सकता। इससे सिद्ध होता है कि बनाने वाला बहुत भारी बुद्धिमान है। कोई कहे कि हाँ ईश्वर हो गया होगा, पहले उसने संसार बना दिया होगा, किंतु अब तो वो मर गया होगा ना, तभी तो नहीं दिखता है। ऐसा भी कोई कहते, अब मर गया ईश्वर, ईश्वर मर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मर गया, इसकी निगरानी कौन, किसकी जानकारी में है? जैसे रेल चलती है, उसको यदि निगरानी न हो तो वो नष्ट हो जाए। उसी प्रकार यदि वह परमेश्वर नहीं है तो फिर सारी सृष्टि की निगरानी कौन कर रहा है, कौन इसको चला रहा है? वो तो मर गया, अब कौन चला रहा है? क्यों फालतू की बातें करते हैं? वो मौजूद है। हम जितने चेतन हैं उसमें आत्मा कभी नहीं मरता। ये शरीर नष्ट होता है क्योंकि शरीर तो विकारी है, इसमें तो विकार होंगे, इसलिए वो जन्मने का विकार आया तो मरने का भी विकार आया। परंतु इस शरीर को देखने वाला, जन्मने को जानने वाला और मरने को जानने वाला, उसमें क्या विकार आया? क्या वो भी मरता है? हमारे शरीर कितनी बार हमको मिले, मरे, हम भी मर गए। जिसमें क्षण क्षण में परिवर्तन होता है वही मरता है। दृश्य में परिवर्तन है, दृष्टा में नहीं है। आत्मा नित्य है, अज है, ये युक्ति से भी सिद्ध होता है। जैसे ये गोछा है, गोछा अंगोछा, इसमें छह विकार है, पैदा होना और फिर होना और फिर बढ़ना और फिर घटना और फिर रूपांतरण होना और नष्ट होना। हमारा शरीर ऐसा ही है, पैदा हुआ है फिर कहते शरीर है, फिर बड़ा हुआ है फिर घटता है, फिर बीमार है फिर स्वस्थ है, ऐसे करते करते मर गया। बाल काले हैं फिर सफेद हो जाते हैं, हर वक्त बदलता रहता है। किंतु वो भी कोई कहता है क्या कि भाई मैं आत्मा भी बदल गया? एक रस रहता है। इसलिए भूल वाली बातों में कभी नहीं आना चाहिए। कोई बात भूल जाते हैं और याद नहीं आती तो कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। बात तो है, ये याद वाली बात कौन कर रहा है? भूलने की बात कौन कर रहा है? किंतु आत्मा इन भूल को भी जानता है, याद को भी जानता है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दिया सड़ाई में आग है पर दिखती नहीं है, पर सब जानते हैं इसमें आग है। उसको घस करके देखो, 100 बरस तक दिया सड़ाई आपके कमरे में पड़ी है, आग नहीं लगी, और अब आप उसको लेकर घिसो तत्काल प्रकट हो जाएगी। जैसे प्रहलाद ने खंभे से भगवान को दिखला दिया, ऐसे आप 100 वर्ष की दिया सड़ाई से आग दिखा सकते हो। ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ महापुरुष जो कुछ चाहता है वो दिखला देता है। जैसे वेद व्यास जी ने युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को और पांडवों को, कुंती आदि को, सबको एक बार फिर दिखा दिया, जिला दिया और मिला दिया और आपस में खूब प्रेम करा दिया, ऐसे महापुरुष है कहां, उनकी वाणी पर विश्वास करना चाहिए।